تفسير دیکھیں گے آیت 163 سے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ. بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے کہ ہم نے وحی بھیجی نوح کی طرف اور ان کے بعد والے انبیاء کرام کی طرف. اور وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر. و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان. اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر. و آتینا داود زبورا. اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور دی. یہ سب کون تھے؟ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. اور اس کے بعد وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اور بھی رسول ہم نے بھیجے جن کے حال ہم نے آپ تک بیان کیے، اور وہ رسول جن کے حالات آپ سے بیان نہیں کیے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کلام کا کرنا. اور ان رسولوں کی خوبی کیا تھی؟ رسول مبشرین و منذرین. یہ رسول خوشخبریاں دینے والے اور آگاہ کرنے والے تھے. کیوں؟ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. تاکہ لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع رسولوں کے بعد نہ ملے، یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام نہ لگائے کہ اس نے ہماری ہدایت کا ذریعہ کیوں نہ مقرر کیا، کوئی نبی کیوں ہماری طرف نہ بھیجا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور غالب ہے اللہ تعالیٰ حکمت والا. یہ تین آیات، آیت 163 سے 165، ان آیات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہود نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی پر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں بھیجی، لہٰذا ہم آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. وہی سوچ کہ جب موسیٰ پہ نبوت آ گئی، اب بات پہنچ گئی، تو اب کسی اور کو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ کو ہم نہیں مانتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آیا، بلکہ یہاں تو ایک پوری چین بیان کر دی. پیچھے سے ہم یہ سلسلہ پڑھتے آ رہے ہیں، تلک الرسل میں بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء کرام کو بھیجا، جو عموماً انہی کی قوم میں سے ہوتے تھے، اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے. کچھ لوگوں نے مانا، کچھ کو نہیں مانا. ان تین آیات میں ہم نے انبیاء کرام کے نام دیکھے. قرآن پاک میں 25 انبیاء کرام کے نام موجود ہیں. ذوالکفل کی نبوت جو ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا شک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں. ان کو ایڈ کر لیں تو 25 ہو جاتے ہیں، نہ ایڈ کریں تو 24 رہتے ہیں. اس کے علاوہ عموماً ہمارے ہاں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے تھے، تو اس روایت میں ضعف ہے، یعنی یہ موضوع درجے کی ہے. امام جوزی کہتے ہیں کہ یہ وضع کی ہوئی روایت ہے. تو جس چیز میں کوئی ہمارا نفع یا نقصان نہیں، اس پہ ہمیں زیادہ بات کرنی نہیں چاہیے. لیکن اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ نبی بھیجے جاتے تھے اور ان کی طرف وحی کی جاتی تھی. یہاں لفظ اوہینا کو دیکھ لیتے ہیں. واو ہا یا اس کا روٹ ہوتا ہے. وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، یعنی ڈکشنری میننگ اگر آپ دیکھیں گے تو اشارہ کرنا. لیکن نبی کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد حقیقت میں وہ وحی ہے جس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچتا ہے. لیکن اگر غیر نبی کی طرف وحی کا لفظ آئے تو اس سے مراد خفیہ اشارہ ہے، جیسے شہد کی مکھی کے لیے آتا ہے قرآن پاک میں سورۃ نحل میں کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. ام موسیٰ کی طرح وحی کا ذکر آتا ہے. اسی طرح بعض جگہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھی وحی کا اشارہ ملتا ہے. تو لہٰذا وحی خفیہ اشارے کو کہتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ملتا ہے وہ فرشتے کے ذریعے سے ملتا ہے. تو اس کے لیے پھر ظاہری جو طریقہ ہوتا ہے اس کو وحی کا طریقہ کہتے ہیں. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وحی جو ہوتی ہے وہ الہام کے معنوں میں بھی آتی ہے، یعنی کسی چیز کو دل میں ڈال دیا جانا، اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى، یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی. اور وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور اللہ تعالیٰ نے وحی نحل کی طرف، یہاں مراد ہے پرسرار طریقے سے کسی بات کا حکم دینا، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے سسٹم میں یہ بات فیڈ کر دی کہ تم شہد بناتے رہو، اسی طرح کسی کو پرسرار طریقے سے کسی چیز کی تعلیم دینے کو بھی وحی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے، شیاطین الانس والجن یوحا بعضہم الی بعض، سورۃ الانعام میں یہ بات آتی ہے کہ بعض شیاطین انسانوں اور جنوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں۔ تو لفظ وحی سے کوئی کنفیوز نہ ہو کہ صرف اس سے مراد وحی ریولیشن ہی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہوگی تو وحی وہ ہے جو اللہ کے نبیوں پہ نازل ہوتی تھی، لیکن بعض دفعہ شیطان بری چیزوں کا جو لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالتے ہیں تو اس کے لیے بھی وحی کا لفظ آ جاتا ہے۔ یہاں اصل میں یہود کے اعمال کی بات جو پیچھے ہو رہی تھی، ان کی بدعملیوں اور ان کے عقائد کے ذکر کے بعد، اللہ تعالیٰ یہاں نبیوں کا تذکرہ لا کر یہ بیان کرتے ہیں کہ نہ تو دین صرف موسیٰ تک تھا اور نہ محمد رسول اللہ تک ہے، بلکہ تم دیکھو تو یہ سارے انبیاء کرام اپنے دور کے چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیغام دیا اس میں بالکل کوئی شک نہیں تھا، ہر ایک بات جو ہے وہ درست ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ یہاں کما اوحینا الی نوح سے بات شروع ہوئی، تو مفسرین ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پھر آدم علیہ السلام کی طرح وحی نہیں اتری، کیونکہ وہ تو پہلے انسان بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اس کا جواب دو طرح سے دیا گیا، ایک تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے، نبی اس سینس میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانیت کے لیے چنا ایک مادی وجود کے لیے، لیکن چونکہ اس دور میں کوئی گناہ نہیں تھے، کوئی اس طرح کی انسانیت میں ابھی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ جس میں وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے لیے آئیں جو بعد کے دور میں ہوئیں، تو لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر وحی اس طرح نہیں آئی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بعد والے انبیاء کرام پر آئی ان کے بعد، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت نوح چونکہ صاحب شریعت نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، اور یہ وہ ان نبیوں میں سے تھے جو بہت ستائے گئے، اولو العزم پیغمبروں کا نام جو آتا ہے پانچ انبیاء کا، اس میں حضرت نوح پہلے درجے کے تھے، تو لہٰذا اس شان کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا گیا، اور وہی بات ہے کہ اس سے پھر ہمارے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ایک اور سوال اس آیتوں کو پڑھنے سے جو اٹھتا ہے وہ کیا ہے کہ آتینا داوود زبورا، یہ الگ سے بات کیوں کی گئی جبکہ کتاب کا ذکر تو پیچھے سے چل رہا تھا؟ تو یہاں آپ دیکھیے کہ کسی کی کوئی ایک خاص چیز ہوتی ہے نا تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ کر کے پیش کرتے ہیں۔ زبور جو تھی وہ بنیادی طور پہ رائمز کی کتاب تھی، پوئمز تھیں، ہم تھیں، ترانے تھے، اس کے اندر اس طرح سے شریعت نہیں تھی جیسے کہ باقی انبیاء کرام کے دور میں تھی، تو اس لیے ان کا الگ سے تذکرہ کیا گیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ پیچھے اگر آپ دیکھیں گے نا ترتیب آیت 163 کی، و ایوب و یونس و ہارون کا لفظ آیا، وہاں موسیٰ کا نام نہیں آیا۔ بعض نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ کا نام کیوں نہیں آیا، حالانکہ حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں ہم عصر تھے، ایک ہی دور میں آئے۔ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ چونکہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول کے ساتھ آگے کہہ دیا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو چونکہ ان کا نام ہائی لائٹ کر کے آنا تھا تو پھر اس لیے وہاں ان کا نام نہیں رکھا گیا۔ اس سے آپ دیکھیے کہ پتہ کیا چلتا ہے کہ گو کے انبیاء کرام چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کے پاس مقام الگ تھا، مرتبہ الگ تھا، کسی کے ساتھ کلام کیا گیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف وحی کی، اور ہر نبی کے پاس وحی بالکل اسی طرح سے آتی تھی جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ کیسے آتی تھی وحی، اس کو انشاءاللہ آگے ہم سورۃ شورا میں وحی کی تین مختلف اقسام کی صورت میں پڑھیں گے۔ ہمارے لیے ان تین آیتوں میں جو عمل کی بات ہے وہ کیا ہے، تعصب نہیں رکھنا چاہیے کہ چونکہ موسیٰ آگے ہیں تو اب محمد کے آنے کی کیا ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص نے ایک دین کا کام کر لیا تو اب دوسرے کو کیا ضرورت ہے کرنے کی، یا اگر میں کر رہا ہوں تو دوسرا کیوں کرے، جب ہم کر رہے ہیں تو دوسرے کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایسی بات، یہ سوچ درست نہیں ہوتی۔ دوسری چیز اس میں ہمارے سیکھنے کی کیا ہے، مبشرین و منذرین، خوشخبریاں دینے کا تذکرہ پہلے آیا اور منذرین کا لفظ بعد میں آیا۔ تبلیغ کا ایک بڑا خوبصورت نقطہ اس میں آیا، رسولوں کی سنت کیا ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے، ڈراوے بات میں دیتے تھے، یعنی دین کی تبلیغ کا آغاز بشارتوں سے ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ جب کسی کو دین کی دعوت دی جاتی ہے نا تو اس وقت تو وہ بالکل گناہوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے، उसके पास हिदायत नहीं। अमूमन ऐसे लोग बहुत ज्यादा गुनाहगार होते हैं, तभी तो कोई नबी आता है या कोई दीन वाला आता है। तो बजाय इसके कि उसको उसकी बातों पे तनकीद की जाए, उसको रोका जाए और उसके बारे में गलत सलत बातें की जाएं, बल्कि उसको खुशखबरी देनी चाहिए। और खुशखबरी के बाद अगर कोई ना माने, यानी आपने बात कर दी फिर भी नहीं को माना, फिर मुनजरीन, फिर आगाह कीजिए। इस पे माओ के लिए भी एक सबक है, आप अपने बच्चों को अच्छे बुरे पे टोकिए, रोकिए, लेकिन पहले खूबसूरत बात कीजिए। बच्चों को ना कहें कि अल्लाह मारेगा, अल्लाह आग में डालेगा, अल्लाह जलाएगा। वो मासूम जहन है, वो अल्लाह के बारे में न जाने क्या लफ सोच लेगा। तो हमेशा पहले अच्छी बात करनी चाहिए, फिर दूसरी, फिर अगली चीज़ देखिए। ली अल्लाह यकून लिन्नास अलल्लाह हुज्जतुम बाद रुसुल, ये बहुत काबिले गौर नुक्ता है इस इनायात का। और वो क्या कि अम्बिया क्यों आए? इतमाम हुज्जत के लिए, हुज्जत को तमाम करने के लिए। क़यामत के दिन लोग आके ये ना कह दें कि अल्लाह ताला हमारे पास तो कोई आया ही नहीं। नबियों का आना इस बात की दलील थी कि अल्लाह ने इंसानों को गाइड करने का, उनकी रहनुमाई करने का पूरा इंतज़ाम किया। ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया और छोड़ दिया, क्योंकि अगर नबी ना आते तो लोग क़यामत के दिन ये कह सकते थे कि हमारे पास कोई आया ही नहीं। चूँकि अल्लाह ने हर दौर के लोगों के पास कोई भेजा, इसीलिए सूरत मुल्क में हम पढ़ते हैं कि जब जहन्नमी जहन्नुम में डाले जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? इस आयत को भी सामने रखें तो मुफस्सरीन एक और बड़ा खूबसूरत नुक्ता बयान करते हैं। कहते हैं कि दुनिया के हर इंसान तक, यानी हम आज के दौर के लोग, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले, चाहे इस वक्त वो एथियस बन चुके हैं, चाहे वो दहरिये हैं, चाहे वो किसी भी नाम नेहाद मजहब को मानने वाले बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके आबाओ अजदाद तक तौहीद का पैगाम पहुंचा हुआ है। आज जितने भी लोग बहके हुए हमें दिखते हैं ना दुनिया में, दर हकीकत ये अंबिया कराम की नस्लों में जो लोग बचे थे उन्हीं की नस्लों में से, उन्हीं की औलादों में से, कि वो इतने बिगड़ गए जब हिदायत का सोर्स बंदे से दूर हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जगह ख्वाहिशें आती हैं, बातिल अकायद आते हैं। बजाय इसके कि अल्लाह को रब माना जाए, फरिश्तों को अल्लाह की मखलूक समझा जाए, लोग फरिश्तों को पूजने लगते हैं, देवी देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है, सितारों का रब मानने के बजाय सितारों को रब माना जाता है, किसी ने किसी को देवी बनाया, किसी ने देवता बनाया। और जब नबियों से दूर का दौर शुरू होता है तो इस तरह से तौहीद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शिर्क में बदल जाती है। जैसे शम्मा, चिराग, कोई भी रोशन चीज़, उससे आप जितना दूर जाते हैं ना उतने अंधेरे पड़ते हैं। तो हर दौर में जो बेहतरीन वक्त होता है वो अल्लाह के नबी का दौर होता है, उसके साथ लोग जो काम करेंगे वो बेहतरीन खैर लेंगे। और अल्लाह ताला ने कहा कि हमने ये सब कुछ इसलिए कर दिया कि कल तुम हम पे ये हुज्जत ना कायम कर दो कि भाई क्या हुआ, अल्लाह ने तो हम तक पैगाम दिया ही नहीं। वकान अल्लाहु अजीज़न हकीमा, और अल्लाह ताला गालिब भी है, हिकमत वाला भी है। आप देखिए कि वो लोग जो दुनिया में नबियों की बात नहीं माने थे ना, कल क़्यामत के दिन भी नबियों को छुटलाएंगे। हदीस में आता है कि क़्यामत के दिन हज़रत नूह को जब पेश किया जाएगा तो लोग उनको कहेंगे हमारे पास तो कोई नहीं आया था, फिर उनकी गवाही के लिए उम्मत मुस्लिम आएगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। तो जिस तरह से लोग दुनिया में बिहेव करते हैं इसी तरह कल आखिरत में भी करेंगे। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ऊपर हुज्जत तमाम करके ये बात बयान करता है कि मैंने तुम्हारे लिए हिदायत का इंतज़ाम कर दिया था। इसके बाद आयत 166 को देखते हैं। लाकिन अल्लाह यशहदु बिमा अनज़ल इलैका अनज़लहु बिइल्मिही, लेकिन अल्लाह इस बात पर शाहिद है कि इसने जो कुछ नाजिल किया इसको नाजिल किया है अपने इल्म के साथ। यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला की गवाही की बात है। अल्लाह ताला की गवाही जो है ये मुशाहदे की बुनियाद पे नहीं है, तजुर्बे की बुनियाद पे भी नहीं है, क्योंकि जब तजुर्बे यानी एक्सपीरियंस बेस्ड विटनेस जो होती है ना, उसमें गलती का इम्कान होता है। लोगों के तजुर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं जिसकी वजह से वो गलत काम करेंगे, लेकिन अल्लाह की गवाही जो है ना ये इल्म की बुनियाद पे है। अल्लाह को इस दुनिया को बनाने से पहले भी पता था कि हज़रत नूह के साथ सिर्फ 70 से 80 लोग आएंगे, अल्लाह को खूब पता था, लेकिन फिर भी नूह को भेजा। 950 साल तबलीग की, उनके ज़रिए से बात पहुंचवाई ताकि लोगों को पता चल जाए कि नबी आए। हुआ वही जो अल्लाह को पहले से पता था, लेकिन इसके नतीजे में हुज्जत तमाम हो गई कि अल्लाह ताला ने खुद से काम नहीं किया। मिसाल देती हूँ, बिल्कुल सिंपल। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, कुरान पाक आप सीख रहे हैं, आपका टेस्ट होता है पारे के बाद। उस पारे के अंदर जो आपने टेस्ट में लिखा होता है उसकी बेस पे नंबर मिलते हैं ना। अब बिलफर्ज आपके क्लास में इंटरेक्शन, आपकी ग्रुपिंग, आपके ग्रुपिंग रैकेट को सामने देखते हुए अगर कोई एग्जामिनर कहे कि पेपर नहीं लेते, सिर्फ इनके इस डेली बिहेवियर पे ही इनको नंबर दे दें, तो दिए जा सकते हैं। 100% ठीक नहीं होंगे, लेकिन किसी हद तक ठीक होंगे। लेकिन लोग नहीं मानेंगे, वो कहेंगे नहीं आप हमें टेस्ट दे के तो देखते, फिर हम उसमें जो नंबर लेते, फिर जो हम मेहनत करते वो ज़्यादा बेहतर होती। तो दुनिया में जिस तरीके से लोग जब तक उनके सामने कोई चीज़ पेश ना कर दी जाए उसको नहीं मानते, इसी तरह लोगों को ये चीज़ साबित करने के अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा, और फिर इस पे गवाही दी कि जो भी चीज़ नबियों के पास आई वो इल्म की बुनियाद पे आई। यहाँ इल्म की फजीलत की भी बात हो रही है। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बता दिया कि देखो अल्लाह ताला ऐसे ही फैसले नहीं करता, कट हुज्जतियाँ नहीं है उसके पास कि जिसका जो दिल चाहा जैसे दिल चाहा वो कर दे, बल्कि वो पूरे इल्म के साथ मालूम तरीके से इन बातों को लोगों तक लेके आता है। वल मलाइकातु यशहदून, और फरिश्ते भी इस पर गवाह हैं। किस बात पर फरिश्ते गवाह हैं? कि नबी आए और नबियों ने लोगों को पैगाम दिया, और किन्होंने माना और किन्होंने नहीं माना, ये सारी चीज़ें फरिश्तों के सामने भी है। ये कौन से फरिश्ते हैं? एक तो किरामन कातिबीन हो सकते हैं, जो उम्मतियों के इंसानों के मामलात को देख रहे हैं। हम में से हर बंदा हर वक्त अपने फरिश्तों की गवाही की जद में है। कल क़यामत के दिन ये फरिश्ते गवाहियाँ देंगे कि अल्लाह ये अच्छे काम करते थे या बुरे करते थे। और मेरा ख्याल है कि जिसको इस बात का यकीन आ जाएगा ना कि मेरे फरिश्ते मेरे गवाह हैं, फिर इंसानों से तो डरना छोड़ देगा। फिर वो जाहिर और बातिन में बिल्कुल एक ही जैसा होगा। उसको दूसरों के लिए ये नहीं होगा कि भाई देखो तुम ये कहते हो और तुम वो कहते हो। यानी फरिश्तों की गवाही का एहसास बंदे को बाशऊर बनाता है। वह कफा बिल्लाही शहीदा, वैसे तो देखा जाए तो गवाही अल्लाह ही की काफ़ी थी। ये भी बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है कि अल्लाह की गवाही के बाद फरिश्तों की गवाही की क्या ज़रूरत थी, ये सवाल हो सकता है। आप देखिए कि इसको फिर ऐसे ही समझे कि किसी भी सिस्टम में दो तीन मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं ना। यानी एक आपका कोई एक टीचर होगा, फिर दूसरे दर्जे पे आपके ग्रुप लीडर्स होते हैं, फिर तीसरे दर्जे पे हो सकता है कि कोई बंदा मैनेजमेंट से मतलब उन चीज़ों में आपसे डील कर रहा होगा। अब कहा जाए कि जब टीचर है तो ग्रुप लीडर्स की गवाही की क्या ज़रूरत है, या ग्रुप लीडर्स की बात हो गई तो अब हमारे पेयर्स अगर कल बनते हैं तो उसकी क्या ज़रूरत है? कहा नहीं, हर बंदे की गवाही का मुख्तलिफ मुकाम है। अल्लाह ने गवाहियों पे गवाहियां देकर साबित ये कर दिया कि तुम यहाँ अनअटेंडेड नहीं छोड़े हुए, तुम्हारी हर चीज़ जो है वो नोट होती है, और जो ज़ात पैगंबरों पर वही भेज सकती है वो फरिश्तों की गवाही इंसान को क्यों नहीं दिला सकती। फिर इसके बाद देखिए कि नबियों के तذکرے के बाद कुछ लोगों का मामला जो उन्होंने अम्बिया कराम के दौर में भी किया और उनके बाद भी, वो क्या था? इन्नल्लज़ीना कफरू, उन्होंने कुफर किया, इनकार किया। किस चीज़ का इनकार किया? अपने दौर के नबी का इनकार किया, उस शरीयत का इनकार किया जो कि उनको अल्लाह ताला ने दी थी अम्बिया कराम के ज़रिए। चलो खुद इनकार किया था तो बैठ जाते, नहीं, वसद्दु अन सबीलिल्लाह, और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका। खुद रुके फिर रोका, क्यों रोका? अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं तुमको भी ले डूबेंगे। जब कोई बंदा हिदायत के रास्ते से अलग होता है तो वो नुमाया हो जाता है, फिर वो अपनी उस कैफियत को छुपाने के लिए कि मैं अकेला एक काम कर रहा हूँ तो लोग सोचेंगे मैं गलत हूँ, फिर वो अपना एक प्रेशर ग्रुप तैयार करना चाहता है। बिल्कुल इसी तरह कुफर के करने वाले लोग जो होते हैं वो भी इसी किस्म के होते हैं कि वो अल्लाह ताला के रास्ते से जब भटकते हैं तो दूसरों को भी भटकाना चाहते हैं। फिर ये भटकाना होता कैसे? कभी दुनिया को रंगीन करके, कभी उस हक के अंदर ऐब निकाल कर, कभी दाई दीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा कर, कभी नबियों को बशर कहकर और बशरियत से आगे कुछ और, यानी इस तरह के मसले में उलझा देते हैं कि लोग फिर कहते हैं कि हमें ये दीन समझ नहीं आता, हम इससे दूर ही अच्छे। और कद्दल्लु दलालम बईदा, बेशक वो बहक गए बहुत दूर का बहक जाना। ये पहला दल्लू क्या है? खुद भटकना, खुद कुफर करना। और दलालम बईदा क्या है? दूसरों को भटकाना। देखिए जो बंदा खुद हक से उतरा होता है ना, किसी भी लम्हे दिल पलट गया वापस आ जाएगा, लेकिन जब कोई अपने साथ दूसरों को भी पलटा चुका होता है ना, तो फिर वो कहते हैं कि अब मैं तो आना चाहता हूँ, लेकिन शर्म आती है कि दूसरे क्या कहेंगे कि आप जिनके सामने उस हक को बुरा कह दिया था। बस दफ़ा जो बंदा गुनाह कर रहा होता है ना ज़ाती ज़िंदगी में, तौबा करके पलट आता है, लेकिन जो लोग अपने गुनाहों को दूसरों के सामने अनाउंस कर चुके होते हैं, जो पब्लिसाइज करके गुनाह करते हैं, फिर उनको तौबा करनी बड़ी मुश्किल लगती है। इस पे मुहावरे भी हैं उर्दू ज़ुबान के कि फ़लां तो तौबा करना चाहती है लेकिन उसको अब उसकी दोस्तियाँ और उसकी यारियाँ नहीं तौबा करने देती। हमारे यहाँ कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, जब इंसान बुरा होता है ना तो वो हो सकता है अच्छा हो जाए, लेकिन जो बदनाम हो जाता है ना, जिसकी बैड रिपीटिशन क्रिएट हो चुकी होती है, फिर उसका दीन की तरफ आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग दूर भटक गए, और दल्लम और दलालम बईद का फ़र्क हम पीछे देख चुके हैं कि एक भटकना है कि उस सांप की जगह के इर्द गिर्द भटकना। मसा आपको इस क्लासरूम में आना था, फर्स्ट टाइम आप आए, किसी ने आपको कहा कि आप ट्रेन स्टेशन से उतरेंगे तो इधर उधर मुड़ेंगे तो आ जाएंगे, आप ट्रेन स्टेशन से उतर के इधर नहीं मुड़े उधर मुड़ गए, उम्मीद है कि आप आ जाएंगे। किसी से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ कुरान की क्लासेस हो रही हैं किधर हैं, हो सकता है आप भटक जाएं, हो सकता है वो, लेकिन उम्मीद है कि आप आ जाएंगे। लेकिन आप आना इस जगह चाहते थे और आप स्टोफनर का कोई स्टॉप ले लें और वहाँ जाके पूछें कि यहाँ कोई कुरान की क्लास होती है, तो किसी को शायद पता भी नहीं होगा। दल्लम दलालम बईदा में ये बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि फिर वो इतना लॉस्ट हो गया कि वो पलटना ही नहीं चाहता। आप देखिए कि हर बंदे को हर लम्हे अपनी बड़ी फ़िक्र करनी चाहिए, सबकी फ़िक्र छोड़कर सिर्फ अपनी फ़िक्र करने लग जाए कि कहीं मैं दल्लम दलालम बईदा तो नहीं हुई। फिर आप देखिए कि इंसान नहीं भटकता, उसकी सोच भी भटकती है, निगाहें भी भटकती हैं, कान भी भटकते हैं, ज़ुबान तो भटकी ही रहती है। अपने जिस्म के एक एक उज्व से पूछिए कि मैं कहाँ भटक चुकी हूँ और कहाँ बहुत ज़्यादा भटक चुकी हूँ। हर चीज़ को उसकी असल जगह पे वापस लाएंगे, इंशाल्लाह आपकी इंसानियत आपके अंदर रहेगी और आप फिर उसी मैसेज पे होंगे जो अल्लाह के नबियों के थे, और उसी दीन के ऊपर आप चलते चलते इंशाल्लाह उसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे अल्लाह के नबी थे। और ये काम जो है ये हर बंदा सिर्फ खुद ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कहा कि वो लोग जो भटक गए उन्हीं का मजीद हाल क्या है कि इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जो लोग काफिर हुए, वह ज़लमू और जुल्म किया, यानी दूसरों के हक दबाए रखे, हकदार को हक ना दिया, ऐसे लोगों का मामला क्या है, लम यकुनिल्लाहु, हरगिज़ नहीं है अल्लाह। हमारे यहाँ कहते हैं ना अल्लाह को क्या पड़ी हुई है, यानी अल्लाह को कोई मजबूरी नहीं है क्या, के लिया फिर अलहम, कि उनको बख्श दे। अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया कि तुम कुछ भी करते रहो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। अल्लाह ताला कभी भी किसी को ये वादा करके दुनिया में नहीं भेजता कि तुम जो करके आओगे करते रहो और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, ऐसा नहीं है। और ना अल्लाह को इस बात की पड़ी है कि वला लियहदियहुम तरीका, के दिखाए उनको रास्ता। एक रास्ता ज़रूर ऐसे भटके हुए को अल्लाह दिखाएगा, क्या, इल्ला तरीक़ा जहन्नमा, मगर जहन्नम का रास्ता। तरीक तुरक से है, एक सबील होता है वो भी रास्ता है, सिरात भी रास्ता है और तरीक भी रास्ता है, यानी तंग रास्ता, तारीख रास्ता, जहन्नुम का रास्ता तो इनको दिखाएगा। खालदीन फीहा अबदा, जिसमें ये हमेशा रहेंगे, वह कान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और ये काम यानी इनको जहन्नुम के रास्तों पे चला देना या इनको भटका देना इनकी ख्वाहिशों के मुताबिक, ये अल्लाह पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस आयत में आप देखिए कि दो तीन बातें हैं। पहली बात है कि अल्लाह ताला ने किसी से ये वादा नहीं किया कि तुम जो भी करके आओ, जैसी मर्जी ज़िंदगी गुजार के आओ, मैं तुम्हें ज़रूर माफ़ कर दूंगा। ये तो ख़तरे की बात है, अलाम की बात है कि अल्लाह ताला ने किसी से ये वादा नहीं किया कि मैं तुमको ज़रूर बख्श दूंगा। तो लिहाजा हर बंदे को इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि अगर मैं भटकता हूँ तो मेरे पास उसका कोई जवाब होना चाहिए। दूसरी बात इधर पता चलती है कि अल्लाह उनको सीधी राह नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्या ये जुल्म है? देखिए, कोई देखना ना चाहे तो उसको कौन दिखाएगा, कोई खाना ना चाहे तो उसको कौन खिलाएगा, हत्ता कि जब बच्चा सोना नहीं चाहता ना तो माँ थपक थपक के थक जाती है, कहती है जाओ फिर तुम नहीं सोते तो ना सो। जिनको नहीं सोना होता ना वो नहीं सोते, किसी सोए को आप उठाएं, आप उठा उठा के रह जाएं और वो नहीं उठता तो आप कहते हैं आप फिर सोए रहो, अब मुझे ना कहना। फिर इसी तरह जब इंसान दल्ल दलालम बईदा की कैफियत में आ जाता है तो फिर एक ऐसी कैफियत आती है कि दिल पे, आंखों पे, कानों पे मोहरें लग जाती हैं, और ऐसे बंदे को ना किताबें फ़ायदा देती हैं, ना रसूलों की तालीमात से उनको कोई फ़ायदा होता है, वो इन सारी बातों को सुनने, जानने, पढ़ने के बावजूद भी अपने नफ्स के पीछे लगा होता है और उसके नतीजे में फिर वो मजीद भटकता जाता है। फिर इसके बाद देखिए तरीका जहन्नम दिखाता है अल्लाह ताला, वो कैसे, इसकी अमली कैफियत क्या होती है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तो बस उसको अब एक ही रास्ता दिखाऊंगा और वो है जहन्नम का रास्ता। तो जहन्नम के रास्ते के दिखाने के कई मानी हैं। नंबर एक, गुनाहों को उसके लिए आसान कर देता है। किसी बंदे को अगर गुनाह करना आसान लगता है ना, तो समझ ले कि ये वो जहन्नम की रोड पे चढ़ चुका है। फिर दूसरी बात यह है कि ऐसे बंदे को नेकी करना मुश्किल हो जाती है, सुस्ती, लेजीनेस, वो नेकियां जो उसके दर्जों को बढ़ा सकती है वो फिसल फिसल जाती हैं। फिर वो शख्स बड़ी बड़ी नेकियों की तो तमन्ना बड़ी करता है और छोटी छोटी नेकियों को ज़ाया करता है। वो दूर पड़ी नेकी को पाने के लिए तड़प रहा है और करीब रखी हुई नेकी को वो उसकी केयर ही नहीं करता। आप देखिए कितने लोग हैं जो हज और उमरे के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, काबे को देखें, गलाफ को चूमें, और यहाँ 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते। यानी करीब की नेकी जो हाथ में, उसको तो लो, वो ले लोगे अल्लाह दूसरी करना आसान कर देगा। बास लोग जंप करना चाहते हैं कि हम एक जंप लगाएं और जन्नत में पहुंच जाएं या ऊपर चले जाएं। आप देखिए कि जंप लगाने वाला अगर सही डायरेक्शन में नहीं लगाता ना, तो वो फिर पहले से भी नीचे मुकाम पे गिरता है। इसके लिए ज़रूरत क्या होती है कि इंसान उस नेकी को कर ले जो उसके लिए आसान है। जिस बंदे के दिल में अपनी ज़िंदगी की बेसुबाती का यकीन होगा, कम आएगी होगी, आजजी होगी, वो तो कभी भी नेकी का कोई काम नहीं छोड़ेगा। और शैतान का मामला क्या है, वो तरीक़ा जहन्नम कैसे दिखाता है, वो कहता है अभी बहुत उम्र पड़ी है, ये नहीं मैं कर सकता, मेरे से ये नहीं होता, मैं वो नहीं करता। मुझे किसी खातून ने कोई बात पूछी किसी के बारे में, यानी उनके बच्चों का कोई मामला था और वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ सोच रही थी। यानी जैसे होता ना कि हर इंसान के कुछ ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब होते हैं, और बस ऐसे ड्रीम्स होने भी चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि एक बार सब ऐसा होता है कि जब हम बच्चों को अच्छे ख्वाब नहीं दिखाते तो वो उसके लिए कोशिश भी नहीं करते। मिसाल है कि अगर कोई बच्चा है, उसको माँ कहती है कि तुम हाफ़िज़े कुरान बनो, और कैसे बनो कि तुम इमाम काबा बनो। और मैंने उस बच्चे के मुँह से भी सुना कि वो बड़े प्यार से कहा करता था कि मैं तो काबे का इमाम बनूंगा। अब आप देखिए कि उन्होंने काबे के इमाम बनने की फिर कुछ चीज़ें देखी, कहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, और ये तो एक अलग चैप्टर है। आपको पता है कि दुनिया में से कहीं के भी लोग जो है वो इमाम काबा नहीं बन सकते, उसकी एक ख़ास क्लासिफिकेशन है। सऊदी अरब ही का एक ऐसा इलाका है जहाँ के लोगों को लेते हैं जिनका असल भी नुतक जो है वो अरबिक है। यानी मिसाल है कि इजिप्शियन और इधर उधर के या दुनिया के मुख्तलिफ कारी कितने खूबसूरत पढ़ने वाले हैं, कवैत के कारी इतने अच्छे हैं, वो काबा के इमाम नहीं बन सकते, यानी उनका एक ख़ास क्राइटीरियन है। अब आप देखिए कि अगर एक माँ बच्चे को कहती है कि तुमने तो इमाम काबा बनना है और तुम्हें मैं सऊदी अरब भेजूंगी और तुम वहाँ उस कबीले और बस्ती में रहोगे और वहाँ सीखोगे, तो क्या उस माँ का ये ख्वाब पहले दिन पूरा हो जाएगा? मोहल्ले की मस्जिद में उसको भेजना पड़ेगा कि नहीं? उसे सीखेगा, कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल इख्तियार करेगा, फिर ही आगे जाएगा ना। तो ज़िंदगी में शैतान का एक रास्ता क्या होता है कि ना नज़र आने वाली नेकियाँ करवाने की तमन्ना में उसको उस रास्ते से इतना दूर कर देता है कि आखिर उसको मौका ही नहीं मिलता। एक और इसकी मिसाल ले लीजिए, मेरे पास लाखों होंगे तो मैं खर्च करूँगा। अक्सर लोगों से आप पूछिए, बस मैंने एक दफ़ा क्लास में पूछा यंग बच्चियों की क्लास में कि अगर आपको ऑल ऑफ ए सडन कहीं से 1 मिलियन क्रोन्स मिल जाएँ तो आप क्या करेंगे? आपकी ज़ुबान में बोल रही हूँ, वरना आप इसको डॉलर और कोई बात भी करें। तो बच्चियों ने कहा, किसी ने कहा मैं सारे अल्लाह के रास्ते में लगा दूंगी, किसी ने कहा मैं आधे लगा दूंगी। वे एक जो बोलते हैं ना, फिर दूसरे भी उसी जैसा बोल रहे होते हैं। तो जब सारे बोल चुके, किसी ने कहा कुछ, किसी ने, लेकिन सब ने कुछ ना कुछ कहा कि हम अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे। एक ने कहा मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगी। वो मैंने कब देखिए, ये तो थी बात 1 मिलियन क्रोन की। अब आप बैठ के घर सोचिएगा कि इस वक्त आपके पास कितने हैं। अगर आज जितने हैं जिसने कहा मैं सारे के सारे लगा दूंगी, तो आज जितने हैं अगर आप वो सारे नहीं लगा चुकी ना, तो कल 1 मिलियन भी नहीं आप लगाएंगी। और अगर आपने कहा मैं उसमें से आधे लगाऊंगी, तो क्या आज जो आपके पास मनी है उसके आधा लगा चुकी हैं? यानी ये होती हैं इंसान की बातें, मौका मिल जाए ये कर देंगे, तो जो मौका मिला होता है उसको नहीं देख रहे होते। फिर उसके बाद कहा कि खालिदीना फीहा बदा, यहाँ फिर एक बात होती है कि ये तो दुनिया में चंद दिन का कुफर करके गए थे। और यहाँ वज़ालमु को भी समझ लीजिए, जुल्म में पहला जुल्म शिर्क है और फिर हर गुना जुल्म है। अब इन्होंने तो 40, 60, 70, 80 साल की जिंदगी गुजारी। एक इल्जाम आता है नाउसुबिल्ला अल्लाह की ज़ात पे कि अल्लाह इनको हमेशा जहन्नम में क्यों रखेगा। इसका जवाब फिर मुफस्सरीन देते हैं, इसलिए कि अल्लाह के इल्म में ये बात है कि इसने 60, 70 साल की उम्र में भी अगर जलालत और गुमराही ही रखी है ना, तो अगर इसको हमेशा की जिंदगी मिल चुकी होती तो फिर भी ये यही करता। ये पीछे बात हो गई ना कि लाकिन अल्लाह यशहदु, अल्लाह गवाही देता है, अल्लाह को पहले से पता है कि लोग क्या करेंगे, तो लिहाजा कोई भी अगर गलत काम चाहे 10 साल करे, 20 साल करे, लेकिन उसके नतीजे में अल्लाह ताला अगर उसको हमेशा की आग में डालते हैं तो कोई इस पे कोई एतराज़ नहीं कर सकता। वकाना ज़ालिका अल्लाह यसीरा। फिर सवाल उठता है, अच्छा इतने लोगों को कैसे आग में डालेगा? अल्लाह को तरस नहीं आएगा? अल्लाह को रहम नहीं आएगा? ये इतने प्यारे, ये ऐसे वैसे लोग का तुम समझते हो? देखिए अल्लाह के जहाँ बाकी नाम है ना, वहाँ अल्लाह ताला का नाम अलगनी भी है, असमत भी है। इतना बेनियाज है कि उसको बिल्कुल परवाह नहीं होती कि कोई फिर तड़प रहा है या मर रहा है। जब लोग दुनिया में अल्लाह की बात नहीं मानते तो फिर अल्लाह ताला भी एक वक्त पे उसकी बात को केयर करना छोड़ देते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि डॉक्टर्स हैं उनके दिल बेहिस हो चुके होते हैं, बार बार लोगों को मरता देख कर, खून निकलता देख कर, वो फिर अपने आप को उन जज्बात में नहीं लाते। तो सिर्फ बात समझने के लिए कि जो दुनिया में नाफरमानियां करके जिएगा, फिर कल अल्लाह ताला उसको वहां अगर आग में डाल लें, वो तड़प रहा है, वो रो रहा है, वो चीख रहा है, तो अल्लाह ताला को उस पर रहम नहीं आएगा। अपना मुहासबा करते हुए यहाँ तक तिलावत सुनेंगे।
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا